ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ஜோ பாய் பஹனே பீச்சே பேட்டே ஹே, கிருபையா தோடா ஆகே ஆ ஜாயே தோ பஹுத் அச்சா லகேகா. ஹம் சப் விஸ்வ ரச்சியதா, விஸ்வ கல்யாணகாரி, விஸ்வ கி சர்வ ஆத்மாவும் கோ சுக் சாந்தி சக்தி பிரதான் கர்னி வாலி பரம்பிதா பரமாத்மா சிவஜி கி பிரிய சந்தான் ஹே. ஹம் ஜப் பகவான் சப்த கேதே ஹே கித்னா அச்சா லக்தா ஹே, க்யோங்கி வோ சர்வ கா பாக்ய விதாதா ஹே, சர்வ மனுஷ்யாத்மாவும் கோ கதி சத்கதி தேனே வாலே சர்வோச்ச சத்கதி தாத்தா வோ சத்குரு பி ஹே. தோ ஆஜ் ஹம் யே தோ நஹீ கஹேங்கே கி ஹம் பகவான் கோ யாத் நஹீ கர்தே. பகவான் கோ மானதே தோ சபி ஹே, பர் ஏக் கஹனே கி பாத் ஹோத்தி ஹே கி பகவான் கி கித்னி ஹம் மானதே ஹே. இசி பிரகார் பகவான் கோ ஹம் கித்னா யாத் கர்தே ஹே. கஹீ பார் தேக்கா ஜாதா ஹே இன்சான் கோ யாத் கர்தே வ்யக்தி பரேஷான் ஹோ ஜாதா. சாரா தின் ராத் உஸ்கோ வ்யக்தி புலாய் பி நஹீ பூல்தா, க்யோங்கி சுக் தியா ஹோதா ஹே, ரிலேஷன் ஹோதா ஹே, கனெக்ஷன் ஹோதா ஹே. தோ இத்னா ஹம் உஸ் வ்யக்தி கோ யாத் கர்தே ஹே. தோ ஏக் பாத் ஹே, க்யா ஹம் உஸ் வ்யக்தி கி யாத் கர்னே கே லியே கடி மே டைம் தேக்தே ஹே? கபி நஹீ. க்யா ஹம் கபி கோய் ஃபோட்டோ சாம்னே ரக்தே ஹே? கபி நஹீ. க்யா ஹம் ஹாத் மே மாலா லேக்கர் உஸ் வ்யக்தி கா ஜப் கர்தே ஹே? ஐஸா பி நஹீ. சாஹே வோ வ்யக்தி ஷரீர் சோட் கே சலா கயா, छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई वृद्ध व्यक्ति हो सकता है कि जिसके साथ हमारा रिलेशन है, या कोई हमारा दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम बहुत याद करते हैं. पर पूछा जाता भगवान को कितना याद करते. बहन जी सवेरे एक माला कर लेते, டைம் மில ஷாம் கோக் மாலா கர்த்தே. ஏக் மாலா மன இத்தனா லிமிட் பகவான் கோ யாத் கர்னே கி. தேக்கியே க்யா ஜாதா யாத் கர்னே சே குச் பிராப்தி நஹீ ஹோகி. சப்கோ பதா ஹே கி பகவான் கோ யாத் கர்னே சே யா பகவான் கோ அப்னானே சே ஜீவன் கித்தனா சுகி பண்ணா ஹே, கித்தனா ஆனந்தமய பண்ணா ஹே, உன்கி பிளஸிங் சே ஜீவன் சல்தா ஹே. லேக்கின் ஃபிர் பி ஹம் பகவான் கோ யாத் கர்னே கே லிமிட். ஆர் பேட்டே கோ பேட்டி கோ மாதா கோ பிதா கோ யாத் கர்னே கி கபி லிமிட் ஹோத்தி? தோ ஹம் கேவல் கஹதே ரஹதே ஹே, परंतु यथार्थ रीति विधि को नहीं जानते. हां, जो आज तक विधियां हमने अपनाई है एक मंत्र के रूप में कि चलिए एक ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार हमने जप कर लिया, माला रख दी तो कल सवेरे हाथ में आएगी. मन को एक खुशी मिलती कि आज मैंने माला कर ली, चलो मैं मंदिर में जाकर के पूजा अर्चा बेल पत्र जल चढ़ाना अभिषेक करना ये सब मैंने किया तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि मेरी पूजा बहुत अच्छी हुई, क्योंकि हम सब भगवान को मानते हैं। इसीलिए कई बार व्रत भी कर लेते हैं, उपवास तो हफ्ते में 3 बार 4 बार, कहीं का तो सप्ताह भर उपवास चलता है। चाहे हम उपवास शब्द को नहीं भी जानते, उपवास की परिभाषा क्या होती है? उपवास मीन्स आज हम कुछ नहीं लेंगे, चले निर्जल भी कर लेते हैं, केवल फ्रूट्स खा लेते हैं, थोड़ा सा कोई साबुदाना खिचड़ी वगैरह खा लेते हैं। आज हमारा फास्ट है, इतना अच्छा लगता है फास्ट रखने से, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता, तो हम उपवास भी कर लेते हैं। लेकिन क्या उपवास शब्द के सही अर्थ को हम जानते हैं? वास्तव में उपवास शब्द का सही अर्थ ही है ऊपर वाले के पास वास करना, अर्थात रहना। उपवास का अर्थ ये नहीं कि भूखे रहो। खाली पेट तो कोई भगवान को याद नहीं कर सकता, और अति दुखी इंसान भी भगवान को याद नहीं कर सकता, और अति सुखी मनुष्य भी भगवान को याद नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा नहीं कहा कि भूखे रहो और भगवान को याद करो। कितना सुंदर गायन है, दाल रोटी खाओ, देखिए कितनी अच्छी बात कही, प्रभु के गुण गाओ। सच में हम इतना प्रभु के गुण गाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? जिसने इतना सब कुछ हमें दिया और हम कहते हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं। वास्तव में हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान के लिए नहीं याद करते, हमें उनसे बहुत सारी प्राप्तियां होती है इसीलिए हम भगवान को याद करते, और इसीलिए एक दूसरे को भगवान की याद दिलाई जाती है। कुछ भी सुख दुख होता है तो कहते भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान ही सुख देने वाले हैं और दुख दूर करने वाले हैं। उससे ही राजयोग में हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग शब्द का अर्थ होता है स्व के कर्म इंद्रियों के राजा। क्या करें बहन जी, कोई उल्टी बातें सुनने में मुझे इंटरेस्ट नहीं, पर कोई सुनाता है तो मैं सुन लेता हूं। तो मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूं? या सुनने के बाद कोई भी बात का मेरे मन पर इफेक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता, परंतु जो 2% भी होता है, होता तो जरूर है। क्या करे बहन जी, मुख से ऐसे शब्द उच्चारण नहीं करने थे, परंतु टंग स्लिप हो गई, गिली है ना, इसलिए स्लिप हो जाती है। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, अर्थात कर्म इंद्रियों के हम राजा नहीं। मैं चाहती नहीं हूं कि नेगेटिव सोचूं, क्या करे, नेगेटिव आ जाता है। मैं नहीं चाहती किसी के ऊपर हाथ चलाऊं, परंतु हाथ चल जाता है, हाथ पाई हो जाती है, तो राजा नहीं ना। इसीलिए राजयोग हमें कर्म इंद्रियों का राजा बनना सिखाता। राजयोग का दूसरा अर्थ है वो राजाओं का राजा बनना सिखाता। जो देवी देवताएं हैं वो कर्म इंद्रिया जीत है, वो राजा भी थे। तो द्वापर से उन देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो राजे लोग बड़े बड़े मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। इसीलिए राजयोग डबल सिरताज राजा बनाता है। राजयोग का तीसरा अर्थ होता है जीवन जीने की कला। राजयोग अर्थात थॉट्स डिसिप्लिन। तो राज माना रहस्यों से भरा हुआ योग। तो इस योग में क्या रहस्य है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा घर कहां है, मेरे पिता कौन है, जाना तो कैसे जाना है, कर्मगति क्या है, भगवान के साथ रिलेशन कैसे जोड़ना है, प्राप्तियों की अनुभूति कैसे होती है, ये सारे रहस्य इस योग में समाये हुए हैं। इसीलिए ये राजयोग है। राज अर्थात रहस्य, योग अर्थात जोड़ संबंध। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति की हम सवेरे सवेरे याद करते या दो तीन दिन कंटिन्यू वो व्यक्ति किसी न किसी बात के कारण याद आता, तो उस व्यक्ति का हमें फोन आ जाता तो हम कहते क्या बात है भाई, हम आपको याद कर रहे थे और आपका मुझे फोन आ गया। तो देखिए याद से याद पहुंचती है। तो राजयोग अर्थात याद की यात्रा है, मन और बुद्धि के द्वारा ये यात्रा करनी है। जैसे व्यक्ति को हम याद करते उसको याद हमारी पहुंच जाती है, कोई संबंध से हम याद करते तो भी याद पहुंच जाती है। तो वैसे भगवान को हम मन और बुद्धि से, आत्मा के पिता परम आत्मा है, इस विधि को अपनाकर हम परमात्मा को याद करें, तब हम परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। इसीलिए राजयोग अर्थात आत्मा का परम पिता परमात्मा से मिलन, यही राजयोग है, जो सभी योगों का राजा है। हम हठ योग करते हैं, यम नियम प्राणायाम आदि करते हैं, तो वो जो योग है, शारीरिक क्रिया आसन करते हैं, उन सब का कनेक्शन बॉडी के साथ है। जैसे हम क्रिया योग आसन कर लेते, लास्ट का आसन कौन सा करते हैं, सबसे लास्ट का आसन शव आसन करते हैं। शव आसन में हम क्या करते हैं, सत्ता को भ्रकुटी तक ले आते हैं। अब राजयोग की शुरुआत कहां से, डायरेक्ट यहां से, मैं आत्मा हूं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। हमें आत्मा का संबंध उस निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है कि भगवान मेरे पिता है, परम शिक्षक है, वे मेरे परम सतगुरु है, माता है, बंधु है, सखा है, जो संबंध मुझे अच्छा लगता उस संबंध से आप मन और बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जोड़िए। मन है संकल्प रूपी स्विच ऑन करो और बुद्धि रूपी कैमरे से विजुलाइज करते हुए उस पिता परमात्मा के साथ मिलन मनाइए। और सब काम करना हम सबके लिए सहज है, कहते भगवान को याद करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि हम केवल एक शब्द रूप में याद करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन बुद्धि के सामने क्या वो सत्यम शिवम सुंदरम ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का वो रूप सामने आता है? या मान लीजिए कि जिस शिवलिंग की हम पूजा पाठ करते आए, क्या वो स्वरूप मेरे बुद्धि नेत्र के सामने आता? जैसे व्यक्ति की याद कीजिए, देवताओं को याद कीजिए, तो उनकी फोटो हमारे सामने आते। वैसे जब हम ईश्वर प्रभु परमात्मा कहते हैं तो क्या मेरे मन बुद्धि के सामने वो दिव्य स्वरूप याद आता है? तो मन जो संकल्प करता है उसमें बुद्धि जो निर्णय करती है और वो बुद्धि नेत्र से, ज्ञान के दिव्य नेत्र से उस परम पिता परमात्मा को हमें अनुभव करना है कि यही वो शिव परमात्मा है, यही कल्याणकारी पिता है, यही वो भोलेनाथ है, यही वो हम सभी के विषय विकारों को मिटाने वाले सर्वशक्तिवान भगवान है। क्या ये स्वरूप हमारे सामने आज तक आया? उस स्वरूप को सामने लाइए और फिर मन और बुद्धि को ले जाइए इस आवाज की दुनिया से पार, सूर्य चंद्र तारों से भी पार, बिल्कुल शांति की दुनिया, लाल ही लाल प्रकाश में ब्रह्म महतत्व है कि जिस महतत्व में परम पिता परमात्मा शिव और हम आत्माएं भी रहती है। तो मन बुद्धि को ले जाना है इस आवाज की दुनिया से पार, तभी मन की एकाग्रता बढ़ेगी। हम केवल मुख से कहते रहेंगे तो मन और बुद्धि तो भटकती रहेगी। मुख कह रहा है राम 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 और मन कह रहा काम काम काम, बुद्धि और कहां भटक रही। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्माण परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज का अर्थ ये नहीं कि आप घर बार का त्याग कीजिए और फिर कहीं जंगल में जाकर बैठिए और भगवान की शरण में आइए, नहीं। सर्वधर्माण परित्यज का अर्थ है देह सहित, देह के जो भी हमारे देह से संबंध है, देहधारियों से संबंध है, काका चाचा मामा भाई बहन और हमारे देह के साथ भी अनेकों के संबंध है, और देह के धर्म जो हम सभी ने बनाए रखे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, इन सबसे ऊपर जाओ, मैं आत्मा हूं, और फिर उस एक में मन को लगाना है। इसीलिए भगवान ने मंत्र ही ये दिया है, मन मना भव। अब कहां भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कार्य करते, अब भगवान की याद में मन को लगाइए। इसीलिए राजयोग का दूसरा नाम है कर्मयोग। हमें कर्म से भागना नहीं है, हम कर्म सन्यासी कदापि नहीं बन सकते, चाहे कोई कहलाता भी हो ना, मैं तो कर्म सन्यासी हूं। जिस आत्मा ने इन कर्म इंद्रियों का आधार लिया है, वो व्यक्ति कर्म सन्यासी बन सकता है। कानों से सुनना भी कर्म है, आंखों से देखना भी कर्म है, मुख से बोलना भी कर्म है, शरीर अर्थात कर्म इंद्रिया है। इसीलिए हम कर्म सन्यासी नहीं बन सकते, हम कर्म योगी बनते हैं। हाँ, कर्म सन्यासी बनेंगे, किस दिन बनेंगे पता है? किस दिन बनेंगे कर्म सन्यासी? नहीं बोल रहे कोई? हाँ, जिस दिन आत्मा इस शरीर से चली जाती है, उस दिन क्या बन गए? कर्म सन्यासी। फिर क्या कहा जाता? चार ड्राइवर, एक सवारी, उसके पीछे जनता सारी। चार ड्राइवर लगते उठाने के लिए, और वो चार कहते ना, चारों की कभी एकमत नहीं हो सकती, एक रास्ते नहीं चल सकते, पर वो समय होता है जो चारों भी एक ही दिशा में चलते, और क्या कहते हुए चलते हैं, और इतनी लाइन कहते, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। फिर बातें भी करेंगे तो क्या करेंगे, अरे जिंदगी क्या है, आज तक बेचारे ने इतना किया, इतना कमाया, क्या लेके गया। पर हम जो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, सच में मैंने वो राम नाम अपने अंदर कितना पाया है, हम सबको पता है, जो कुछ है हम सब कुछ यहां छोड़ के जाने वाले, साथ में क्या चलना है। नई बात तो कोई कहने रहे हैं, वही बात है जो हम भूले हैं, पता है नहीं ले जाना है, लेकिन हम उसी में इतने फंसे हैं कि हमें अपने लिए भी फुर्सत नहीं है। जो चीज साथ चलने वाली है, जो सत्य है, उसके लिए फुर्सत नहीं, और जो असत्य है, जो सब कुछ यहां छोड़ के जाएंगे, उसके पीछे कितनी मेहनत है। इसीलिए कहा कि भगवान ने गीता में राजयोग सिखाया और कहा मन मना भव, तन तना भव नहीं कहा। क्यों नहीं कहा तन तना भव? क्या करे भगवान, मेरा तन ही ठीक नहीं है, कैसे मैं आपको याद करूं? इसीलिए भगवान ने तनतनाभव नहीं कहा, विनाशी चीज है, मिट्टी में मिल जानी है, इसे क्या याद करना। फिर भगवान ने तनतनाभव इसीलिए नहीं कहा क्योंकि छोटा बड़ा गोला गोरा काला बहुत सारी चीजें आ जाएगी। भगवान आपने कहा मुझे अच्छा तन दिया जो मैं आपको याद करूं। और फिर भगवान ने धन धनाभाव भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा धन धनाभाव? भगवान ने धन धनाभाव नहीं कहा पर आज मनुष्य खुद ही बोलते, भगवान पार्शलिटी करते हैं, धनवान लोगों को जल्दी दर्शन देते हैं, हाँ उनके लिए वो हमने सिस्टम बनाए, भगवान ने नहीं। तो गरीब व्यक्ति तो कहता था मैं तो भगवान को याद ही नहीं कर सकता, मेरे पास तो धन ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो सबके पास वो है मन, और उस मन को ईश्वर की याद में लगाना। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते उसके रिलेटेड सोच चलती है, मुख से बातें करते महिमा करते जो निंदा करते लेकिन कहते हाँ उसको याद कर रहे, ऐसे जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो भगवान के रिलेटेड हमारी सोच होती है, थोड़ा याद कर लिया फिर मन भटक रहा, बेटे का क्या होगा, अरे आज तो मैंने दूध अंदर लिया ही नहीं है, ये होगा वो होगा, पता नहीं कितनी सारी पास्ट की बातें भी याद आएगी, कहां कहां मन भटकता, क्योंकि मन को हम सही दिशा नहीं दिखाते। तो भगवान के गुणगान कीजिए, क्या दिया भगवान ने मुझे, सब कुछ उसने हमें दिया है। चलो स्थूल प्राप्ति छोड़ दीजिए, आज भगवान ने फ्री ऑफ चार्ज ऑक्सीजन हमें कितना अच्छा मिल रहा, कोरोना काल में हमने अनुभव किया, ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हुआ, और जिनको ऑक्सीजन मिला उसकी कॉस्ट कितनी हुई। तो सोचिए सारे दिन में जो हम इतना ऑक्सीजन लेते उसकी अगर भगवान ने कहा बच्चे मुझे कॉस्ट दे दो तो क्या हम चुका सकते हैं। सूर्य प्रकाश जिससे हमें आज कितनी अच्छी हेल्थ मिल रही, कितनी कारोबार हो रही है, एक बिजली का कनेक्शन लेते एक मीटर लग जाता, भाई एसी पूरी रात नहीं चलाना क्यों, बहुत बिल आ जाएगा। चिंता, और इस सूर्य प्रकाश में हम इतने काम कर लेते इससे हमारा हेल्थ ठीक रहता, उसका अगर भगवान हमें कहे कि इसका चार्ज दो तो क्या हम चुका सकते हैं। पूछिए अपने आप को, गवर्नमेंट केवल पानी का कनेक्शन देती है पानी बना के नहीं देती है, फिर भी पानी का भी मीटर आ गया, हर महीना आपको इतना बिल देना पड़ेगा। तो विचार करने की बात है, भगवान देने वाला दाता है, वो इतना कुछ दे रहा है हमें और फिर भी हम सबके अंदर से निकलता क्या दिया भगवान ने, हम करते हम पाते। वास्तव में सब कुछ उसका दिया है लेकिन उनके पास एक तराजू रखा हुआ है और वो है कर्म फल, जिसके आधार से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हम कितना उस परमात्मा पिता को याद करें। आज एक डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हार्ट की, 15-20 साल की उम्र बड़ी हो जाती, बार बार कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तो मुझे जीवदान दे दिया, और यहां भगवान ने जीवन ही दे दिया, जीवदान भी दे दिया, तो भी दिल से शुक्रिया नहीं। थोड़ा दुख आया तो किसको गाली देंगे, तो वो क्या याद है? हमें तो भगवान के गुणगान गाने बड़े प्यार से, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपने तो हमारे जीवन को कमाल कर दिया। हम तो अंधियारे में थे, आप ज्ञान के सागर शिव बाबा हमें ज्ञान देकर, दिव्य बुद्धि बनाकर हमें रोशनी दी है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा विषय विकारों के कारण जन्म जन्मांतर की पतित बन गई थी, आपकी दिव्य शक्तियों से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। प्यारे बाबा, आप दयालु है, आप कृपालु है, हमने असम्य ऐसे अपराध किए, सो भी जन्म जन्मांतर आप क्षमा के सागर बन मुझे क्षमा कर रहे हो, मुझ आत्मा पर दया करुणा बरसा रहे हो। हे प्यारे पिता परमात्मा, मेरी आत्मा के परम पिता शिव बाबा, आपका ये दिव्य प्यार मेरे जीवन को ऊंचा उठा रहा है। मैं आपके स्नेह में लीन अनुभव कर रही हूं। आपका ये प्यार, आपका दुल्हार मेरे जीवन को बहुत ऊंचा बना रहा, मेरा भाग्य जो है धन्य धन्य हो गया। प्यारे पिता, शुक्रिया आपका। क्या हम इस तरह से कभी उस परमात्मा को याद करते, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन दिल या मन उस पिता के साथ हम कितना जोड़ते हैं? राजयोग की विधि यही है, स्वयं को आत्मा निश्चय कर कर्म करते भी उस पिता परमात्मा को याद कर। कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म योगी जीवन अपनानी है। कर्म और योग, कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस। आज हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने, क्या हम सब कर्म सन्यासी हैं? हम सब कर्म योगी हैं। लेक्चर देना क्या है, साउंड सिस्टम संभालना क्या है, भोजन बनाना क्या है, कर्म है ना? केवल भोजन बनाना ही कर्म नहीं, भोजन खाना भी क्या है? कर्म है। इसीलिए हम कर्म योगी हैं। हम कर्म भी करते और परमार्थ भी साथ में कर रहे, इसीलिए नेचुरल कर्म योगी जीवन। कहीं बार लोगों को ऐसे लगता, शायद हम ब्रह्मा कुमारी जी में जाएंगे तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहां बहुत गिनी चुनी अपने पास्त के श्रेष्ठ कर्म की प्रालब्ध लेकर आई हुई आत्माएं जिन्हों को भगवान ने इस ईश्वरीय कार्य करने के लिए सिलेक्ट किया, ऐसे सरेंडर भाई बहने बहुत थोड़े हैं। हम कोई अलग दुनिया से यहां नहीं आए, हम भी आपके जैसे ही थे। हम पहले वहां ही थे जहां आप हैं, फिर हम यहां आए, कर्म करते करते आए, छोड़ के नहीं आए। कई भाई बहने हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, कार्य व्यवहार संभालते हैं, लेकिन फिर भी वे राजयोग कर रहे हैं। और तो और क्या मिसाल मैं आपको बताऊं, हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति, मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज भी वे राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जिस भी स्थान पर जाती है इंडिया में, वहां वो मेडिटेशन करते हैं। हमें कैसे पता? वो जिस भी शहर में जाते उनके प्रोटोकॉल में लिखा होता है आज मैडम स्टे करने वाले हैं, वो ब्रह्मा मुहूर्त पर उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मेडिटेशन लैंप, मेडिटेशन फोटो लाकर आपको तैयारी करनी है। और हमारे आश्रम पर अधिकारी आते हैं, वो ले जाते हैं, और जब वो वापस समय वो साधन पहुंचाते हैं, कहते हैं मैम तो 3:30 बजे उठ करके आपका मेडिटेशन कर रही थी। तो विचार कीजिए भाइयों और बहनों, क्या वो अपना पद नहीं संभाल रहे हैं? पद भी संभाल रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी जीवन, हमें कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म में हमें और दक्ष बनने के लिए राजयोग बहुत मदद करता है। हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा, मेरे तो केवल ये हाथ है, कराता मुझसे वही है, और जो योग्य है वो ही कराएंगा। इसीलिए कर्म सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको ये व्हाइट कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, जिस ड्रेस में आप चलते हैं वैसे ही चलिए, ड्रेस से कनेक्शन नहीं। हाँ, ये ड्रेस पवित्रता का प्रतीक है, व्हाइट कपड़ा शांति का प्रतीक है, लीडरशिप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है वहां जाने से वही ठीक कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहीं, आप प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए मुझे मैं और मेरेपन से मुक्त होना है, न कि कर्तव्य से मुक्त होना है। यह है कर्मयोग। मैंने किया, कितना सिर पर बोझ है, ये मेरा है, कितना बोझ। दे दीजिए सारे बोझ शिव बाबा को, बाबा आप आकर के ये काम करो, देखिए आपका काम होता है या नहीं। बड़े सरेंडर भाव से कह दो, बहुत आंतरिक वो प्रेम और भावना से कह दो, सबका बोझ उठाने वाला मेरा भी बोझ उठा लेगा। ये अंदर श्रद्धा और भावना हो, श्रद्धा भावना फल अवश्य देती है। इसीलिए हमें कुछ छोड़ना नहीं। जो आप लोगों ने कई बार सुनते तो पूछ लेते, हम यहां आए हैं अब हमें ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ो। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था और डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन करते भी उनको बीच में सिगरेट चाहिए ही चाहिए। कहा मैं माउंट आबू तो आऊंगा पर मैं रह नहीं सकूंगा सिगरेट के बिना। बहन जी मैं कैंपस के बाहर जाकर के पीऊंगा, मेरी हैबिट है ना। हमने कहा ओके, अब चलिए तो सही। और जब वो यहां आए, 3 दिन रहे, उनको याद ही नहीं आया कैंपस के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने कहा आपने तो कहा था, फिर आपने छोड़ा कैसे? बोला मैंने छोड़ा भी नहीं पर मुझे याद ही नहीं आई। क्योंकि ये जो हम व्यसन लेते हैं ये इसीलिए लेते हैं, हमारा विल पावर कहीं ना कहीं कमजोर है। इसलिए किसी को जैसे होता है ना, चॉकलेट मुंह में पड़ा रहे, ऐसे ये आदतें लग जाती है और फिर लगता है इनके बिना हम नहीं चल सकते। हम आदतों के वशीभूत हो जाते। पर राजयोग वो शक्ति है जो कर्म इंद्रियों का राजा बना देती है। आपके संकल्प में भी नहीं होगा मैं छोड़ सकता, वो छूट जाता है। तो ये ताकत कौन देता? और दूसरा उनका अनुभव था, कहीं बार बहन जी मैंने छोड़ने का प्रयत्न किया, फिर 3-4 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, फिर पीता था। मुझे तो पूरा ज्ञान भी था ये कितना नुकसान करते, लेकिन आदत जो लग गई उससे मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। पर यहां वो अमृत वेले से लेकर फुल सेशन अटेंड किया, आज भी वो व्यक्ति यहां आकर 10 साल हुआ, ब्रह्मा कुमारी इसके रेगुलर साधक है, आज भी हाथ नहीं लगाते। कहां किसी ने कह दिया था, अरे आप तो उधर से आए ना इसलिए आपको अभी लग रहा, देखेंगे 1 महीने के बाद क्या होगा। परंतु आज 10 साल हुए, जो बात हम असंभव समझते हैं वो संभव हो जाती है राजयोग के अभ्यास से। इसीलिए आपको कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पाना है। जो पाने की इच्छा थी वो नहीं कर पा रहे थे, वो सब कुछ प्राप्त होता है कर्मयोगी बनने से। हम कर्म कुशल बन जाते हैं, कार्य शक्ति हमारी बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारे भोजन में भी कई बार लोग आते हैं, वो भी यही कहते आश्रम में, बहन जी शुद्ध खान पान हमसे नहीं होगा। हम कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं आपको खान पान शुद्ध करो, ये तो भक्ति में भी कहा गया है। जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसा अन्न होता है। हम सब अहिंसक लोग बैठे हैं, है ना? अहिंसक सभी हाथ उठाइए, आप सब अहिंसक हैं? बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया, क्यों? अभी तो किसके पास तलवार नहीं ना, किसी के पास बंदूक तो नहीं ना, फिर आप हिंसक कैसे जो हाथ नहीं उठाए? मतलब आपके मन ने ये बात स्वीकार की या हिंसक है। आज हमारा जो भोजन है, हम सबको पता है, हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं। आध्यात्मिक रूप से तो नहीं नहीं, धार्मिक रूप से भी नहीं, लेकिन हम आज उसके आसक्त हो गए। नॉनवेज खाने बिना नहीं चलता बहन जी, हम कहते मत छोड़ो, जरूरत नहीं है छोड़ने की, जो आप खा रहे खाते रहिए, लेकिन भगवान को तो याद कीजिए और फिर उसका करिश्मा देखिए। अपने आप आपका मन उस तरफ जाएगा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसे हमारे लाखों भाई बहनें हैं जिन्होंने अपने खान पान पर परिवर्तन में लाया है। छोड़ना नहीं, परिवर्तन करना है। हम सबको पता है, काटने वाला काटता तब है जब खाने वाले खा रहे। इसीलिए काटने वाले पर एक गुना पाप, खरीदने वाले पर दो गुना, खरीद कर खाने बनाने खिलाने वाले उन सब कर पांच गुना पाप होता है। हम तो कहते भगवान हम झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, बुरा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं बोलते, लेकिन हफ्ते में एक दो बार तो बुरा खा ही जाते, और वो भी अपने पेट को हम स्मशान बना देते। मसाले डालकर हम वो चीज ग्रहण करते और फिर हम कहते बहन जी शांति चाहिए, बहन जी तनाव बहुत होता है, भगवान मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। भगवान तो 24 आवर्स, चाहे आप उनको मानो न मानो, याद करो न करो, वो हमारे परम पिता है। वो हमें दुखी नहीं देख सकते। उनकी शक्तियां सारी विश्व की आत्माओं को सबको आज भी मिल रही है। टीवी सेंटर से प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रिले हो रहा, बेटा अपने कमरे में वो प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहा, लेकिन हॉल वाले टीवी सेट में वही प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा? कहीं तो एंटीना में गड़बड़ है। तो हमें भी अपने को देखना है ना कि क्यों नहीं भगवान की याद मन में रहती, क्यों नहीं मुझे सुख शांति की अनुभूति होती, क्यों नहीं मैं अपने आप को सशक्त महसूस करती। तो ये मेरा कर्म भी, चाहे मैं संग से, खान पान दोनों शब्द पीते भी हम क्या है, महिलाएं भी अछूत नहीं आजकल, कभी कभी, लेकिन कौन सी लिस्ट में नाम आएगा? सिर्फ पार्टी होती है ना तभी, एक सिप ज्यादा नहीं, वो लोग नाराज हो जाएंगे, हेल्थ बिगड़ जाएगी चलेगा, भगवान नाराज हो गए चलेगा, परिवार दुखी हो रहा चल रहा, लेकिन एक इंसान के पार्टी में जाकर मैं अपने नियम संयम धारणा सब तोड़ देती हूं। कहां है मेरी विल पावर, कंट्रोलिंग पावर? हमारा विवेक, जिसको आप लोग कहते हैं मन की आवाज, मन एक आवाज लगाता है, ये काम नहीं करो, ये आपको नहीं करना है, फिर भी वो कर लेते हैं। हम अपने खुद के सत सत विवेक की हत्या करते। नुकसान होने के बाद हम कहते, बहन जी मेरा मन मुझे कहता था मत पियो, मत खाओ, मत ऐसे करो, मैंने कर लिया, नतीजा ये हुआ। सच में हम झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते। अभी अपने से पूछिए। कहते हैं भोजन करना क्या है? यज्ञ कर्म होता है। जठर अग्नि में हम जो खाना डाल रहे हैं उसके वाइब्रेशन क्या आएंगे? नया घर लेते हैं, वास्तु शांति में यज्ञ हवन करते हैं, तो हम आहुति में क्या डालते हैं? वनस्पति घी? कोई भी वृक्ष की लकड़ी? नहीं, क्या डालते हैं? सच्चा घी चाहिए, चंदन की लकड़ी चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, नारियल चाहिए, कपूर चाहिए, कि जिन चीजों की आहुति देने से वातावरण और वास्तु की शुद्धि हो जाए। और कुछ दिन हो जाते, वास्तु तो शुद्ध कर ली, फ्रीज में कितनी प्रकार की चीजें हम ला ला के रख देते, और उस घर में यज्ञ हवन किया शांति के लिए, शुद्धि के लिए। आए दिन टेबल पर बैठे, बॉटल खुलती है, आ रहे पदार्थ हम खा रहे बड़े प्यार से, और सुबह सुस्त होके पड़े हैं। क्या ये लाइफ है? पूछिए अपने आप से। भगवान ने हमें भेजा इस धरा पर, तो हमने क्या पाया था? क्या हमारी जीवन थी? हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब भी कोई फैक्ट्री खोलता है, नया प्रोडक्शन होता है, जब तक की प्रसिद्धि नहीं होती, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, 100% अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। धीरे धीरे सब चेंज हो जाता। तो क्या भगवान ने जब ये दुनिया बनाई और सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान को रचा, तो क्या वो जंगली जानवर था? नहीं, सर्वश्रेष्ठ रचना दैवी मनुष्यात्माएं थी। तो वो भी तो कर्म ही करते थे, देवी देवताएं भी प्रवृत्ति चलाते थे, प्रवृत्ति उन्होंने छोड़ी नहीं थी। नाम लीजिए, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता गाए जाते हैं, लेकिन जीवन में वो दिव्य मूल्य थे, सात्विकता थी। हम कहते हैं कर्म करने हैं, परंतु झूठ तो बोलना ही पड़ता है, मिलावट तो करनी पड़ती है, ऐसा तो चलना पड़ता है। तो ये हमने मिला दिया, हम कर रहे हैं, वास्तव में हम ऐसे नहीं थे। अब बच्चा अगर झूठ बोलता तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम झूठ बोलेंगे तो किसी को कैसे अच्छा लगेगा? मतलब झूठ बोलना तो मेरा धर्म नहीं, कर्म नहीं। तो ये हमने अपने कर्मों को ऐसे करते नीचे आ गए। चलता है, कितनी अच्छी बात है। हमें भगवान कहते कर्म में योग लाओ, जो कोई कर्म करते परमात्मा को याद करके आरंभ कीजिए। तो आपको बुरे कर्मों से बचाने की जिम्मेवारी उसकी है। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म योगी बनना है। कर्म करते बुद्धि का योग उस परमात्मा के साथ। हर कर्म में बुद्धि लिप्त नहीं होती है। कितने ऐसे कर्म हैं जो नेचुरल हम करते बुद्धि नहीं लगाते, वो जो समय है उस समय बुद्धि योग भगवान से जोड़ना है। इसीलिए राजयोग बुद्धि योग कहलाता है, भक्ति योग भी कहलाता है। भावना श्रद्धा से आप परमात्मा को सरेंडर होके चलिए, भक्ति योग है। हमें मानस पूजा करनी है, सिर्फ मुख से नहीं कहना है। तन मन धन सब कुछ तेरा, अर्पण किया प्रभु क्या लागे मेरा, और कार्य में आए सब मेरा। थोड़ा खर्चा बढ़ गया घर का, भाई साहब का, मेरा मेरा करते बीपी हाय, शुगर हाय, क्योंकि मेरा है। जबकि दिया उसका है तो उसी का समझिए। बुद्धि और कहीं जाए ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसका है, उसी ने दिया है और पूरे परिवार के भाग्य से हमें मिला है। श्रेष्ठ भावनाएं, प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद में कभी मैपन नहीं होता। बेलपत्र नहीं मिले तो अंदर अरे आज तो फूलमाला नहीं मिली। भगवान के गुणगान की फूलमाला उसको चढ़ाओ। आत्मिक ज्योति को जगाना, ये सबसे बड़ी दिव्य आरती है। हम भगवान के कुल के दीपक है। ये आत्मा की ज्योति जगाकर आप अपनी मानस पूजा कीजिए, तो ये भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। इसलिए छोड़ना नहीं है, भगवान से पाना है। जन्म जन्मांतर मुझ आत्मा ने क्या कर्म किए, सत्कर्म किए तो सुख मिल ही रहा, कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी भोगना हम भोगते है ना, लेकिन वो विकर्मों को भस्म करने की शक्ति परमात्मा से हमें मिलती है। एक छोटा सा मिसाल है, स्कूल में हम सबने सुना है कि टीचर हमें दिखाते थे एक लेंस, कांच लेते, उसके नीचे कागज रखते या कपास रखते, और सूर्य की किरण एकाग्र हो जाती तो नीचे रखा हुआ कागज या कपास जो है वो जल जाता। ठीक इसी प्रकार जब आपकी आत्मा का कनेक्शन अर्थात बुद्धि योग उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका अनुभव हमारा परिवर्तन होता है, और भीतर में जो हमारे पास्त के किए हुए कर्म है जिसे विकर्म कहे, वो दग्ध हो जाते हैं और हमारे भीतर सात्विकता अपने आप बढ़ने लगती है। ये राजयोग की शक्ति हमें महसूस होती। आप दृढ़ता लाइए कि मुझे ये संस्कार जीतना ही है, और रोज शिव बाबा के आगे अर्पण कीजिए। देखिए वो संस्कार भी परिवर्तन होता, आंतरिक खुशी महसूस होने लगती, आत्मिक सुख महसूस होने लगता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कितने भी कड़े ते कड़ी समस्या है उसका समाधान हो जाता है। कल रात के सेशन में हम सुन रहे थे, बीमारी आई तो क्या करें, सूरज भाई जी ने बहुत ऊंची संजीवनी बूटी दे दी, आप संजीवनी दवाई दे दी जिससे जीवन ही बदल जाए। थॉट्स पावर केवल पानी में प्रयोग, भोजन को भी आप थॉट पावर से शुद्ध सात्विक बना के खाओ तो आपका हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही राजयोग से प्राप्त होते। तब कहां राजयोग ये जीवन जीने की कला सिखलाता है। हमें छोड़ना नहीं है, हमें परमात्मा से प्राप्त करना है। जो हमारी गलतियां हैं वो भगवान सुधारते हैं, इसीलिए तो उनको बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं बिगड़ी को सुधारने की, भगवान में वो ताकत है। कभी कभी घर में भी होता है ना, बच्चा किसी का नहीं मानता, कहेंगे और किसी से भी ये नहीं सुनेगा, केवल इसकी पापा की बात मानता, बस पापा को आने दो ठीक हो जाएगा। तो हमारे पापा कौन? स्वयं भगवान। और वो धरा पर आए हैं, वो हमारा दुख नहीं देख सकते, इसीलिए वो विशेष हम सभी को निमंत्रण देकर जगा रहे हैं। हे आत्मन, अज्ञानता की नींद से जागो, अब सोने का समय नहीं है। तो आंखों की नींद नहीं, ये आत्मिक जागृति है, अज्ञानता की नींद है। हम सब ज्ञानी हैं, किसको पता नहीं है बुरे कर्म का फल बुरा मिलता, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता, फिर भी हम बुरा करते। क्योंकि मुझ आत्मा में वो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। पर जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, सबसे अच्छा समय ब्रह्मा मुहूर्त का समय। आप अपने घर में रोज मेडिटेशन कीजिए, शुरुआत में 15-20 मिनट कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए, लेकिन 4 बजे जागना है। क्यों जागना है? क्योंकि उस समय स्वयं वरदाता विधाता भाग्य विधाता भगवान हम सबके घरों का चक्कर लगाते, लेकिन हम सोए रहेंगे तो कैसे हमको महसूस आएगी। इसीलिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय खास हम सबके लिए भगवान ने रखा है। सारा दिन तो विश्व को देना है, अपने बच्चों से कब मिलेंगे? तो उस समय उठ करके अपने घर में एक स्थान बनाइए, छोटा सा भी स्थान है, एक जगह, रोज उसी स्थान पर बैठ करके मेडिटेशन कीजिए। फ्रेश हो जाइए, अच्छे भगवान के, यहां भी भगवान के अच्छे गीत बने हैं शिव बाबा की याद के लिए, जो वातावरण निर्मिति के लिए मदद करते हैं। अच्छे अच्छे गीत लगते हैं, कोई म्यूजिक शांति की अनुभूति कराता, खुशी की अनुभूति कराता, वो बहुत धीमी आवाज में बजाइए। और फिर आप स्वयं को संकल्प दे कि मैं आत्मा शिव बाबा से मिलन मनाने आई हूं, अब चले मुझे बाबा से मिलना है। फिर अपने दिल की बातें कीजिए, सुख दुख सुनाइए, उनकी महिमा कीजिए, खुद के लिए भगवान से अच्छे वाइब्रेशन लीजिए। बाबा आज इस काम के लिए मैं जा रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग, वो आपको महसूस होने लगेगा। तो सवेरे का समय, वैसे भी कहा जाता राम सुमर प्रभात मेरे मन, बहुत अच्छा समय होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत धनवान व्यक्ति था और कुछ कारण से उसके जीवन से सारा धन संपत्ति सुख सब कुछ कर्म फल ऐसा हुआ कि उसका देवाला निकल गया। गुरु नानक जी थे तो गुरु नानक जी एक जगह पर सुबह सुबह सत्संग करा रहे थे। कहते वो व्यक्ति उस सत्संग में गया, गुरु नानक जी ने नाम स्मरण का बहुत महिमा सुनाई जो हम सब सुन रहे हैं अभी, ऐसी बहुत बातें कही कि भगवान आए ही है हम सबके दुख दूर करने। व्यक्ति सुनता रहा, सब लोग चले गए, ये बैठा ही था। गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई आप नहीं गए तो कहां मुझे आपसे एक काम है। बड़े प्यार से गुरु नानक देव जी ने कहा, सुनाई। तो उसने बताया कि मेरा इतना सब कुछ था, सब चला गया और आपने तो नाम की महिमा की, अब मेरा तो मन लगता ही नहीं है क्या मैं भगवान को याद करूं, क्योंकि भगवान ने मेरे को ऐसा कुछ रखा ही नहीं मेरे पास जो मैं याद करूं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम बैठ के नाम स्मरण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बोला, गले में एक ढोलक डालो और सुबह सुबह 3-4 के बीच में एक एक व्यक्ति के द्वार पर जाकर के ढोलक बजाओ और सबको कहो, जाग मुसाफिर जाग, भगवान को याद करने का समय है, ये करना पड़ेगा। बोला, हाँ गुरुजी ये करूंगा। अब वो व्यक्ति ने गले में ढोल डाल दी, आप समझ सकते हैं सुबह सुबह 3-4 बजे की नींद कितनी मीठी होती है। अनुभव यही कहता, लोग कहते पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह ही नींद आई, बस सुबह आंख लग गई। अब उस टाइम कोई आपके द्वार पर आकर के जोर जोर से ढोल बजाए और कहे, जाग मुसाफिर जाग, अब भगवान को याद करने की वेला है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन तो कोई ने कुछ नहीं कहा। अब ये गुरु आज्ञा मिली और करना ही है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो वो रोज जाता रहा, इतने लोग उनको गाली देने लगे, इतने लोग गाली देने लगे, पीटने तक भी बात आती। वो कहते थे मैं नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा। फिर वो गए गुरुजी के पास, गुरुजी को कहा, गुरुजी ये सब बंदे मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, मैं तो कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनको कहता जागो मुसाफिर जागो, भोर भई, अब भगवान को याद करो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, आपको अपना काम करते रहना है, वो अपना काम करते आप अपना काम करो, वो जो गाली दे रहे, वो जो बुरा बोल रहे, वो जो कुछ कर रहे, वो आपका सारा खाता कम होता जाएगा। कहते आज भी वो व्यक्ति पंजाब के किसी गांव में, उस गांव में आज भी वो ढोल बजती है, कितने सालों की बातें। तो हम तो कई बार थोड़ा कुछ सत्संग किया, किधर गए, या सुबह सुबह उठे, अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सारा दिन ऐसा। थोड़े दिन होगा क्योंकि हमें आदत नहीं है। जब एक बार किसी चीज की आदत पड़ जाती है फिर न नींद आएगी न आपको कष्ट लगेगा, सारे कष्ट आपके जीवन के वो हर लेता है, ये हमारे पास अनुभव है। इसीलिए उनका शुक्रिया अदा जरूर करो, कितना भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, भगवान आपका शुक्रिया, आप मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, आप मेरी समाने की शक्ति बढ़ा रहे हैं, आप मेरे अंदर परखने की शक्ति, राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो वो शक्तियां भी हमें मिलेगी जो हम सबके भीतर है, भीतर नहीं होती तो हमें महसूसता नहीं आती। अरे मैं ये दो शब्द सुन लेती तो आज ऐसा न होता, मतलब मुझे पता है कि मैंने वो दो शब्द सहन नहीं किए उस समय, तब तो आज इतनी बात हो गई। अगर सहन शक्ति ही न होती, सामना करने की शक्ति ही न होती तो मुझे महसूस कैसे होता। कई बार हम कहते हैं दो शब्द सुना देते थे ना, उसको वहां ही पता चलता था, लेकिन उस समय जो सुनाने का टाइम था, आपकी सामना करने की शक्ति उस समय हाजिर नहीं थी, या मालिक के ऑर्डर में नहीं थी, अब्सेंट हो गई, तो आपने सहन कर लिया। और जिधर सहन करना था उधर बोल दिया, तो उस घड़ी सहन शक्ति डिसऑर्डर थी। इसीलिए जो हमारी इनर पावर्स है, जो आत्मा के गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये गुण, ये शक्तियां और अनेक गुण है, रहम दिल, परोपकार, अनुशासन, नियमितता, जो हम चाहते हैं जीवन में, वो राज्यों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसे भगवान मिल गया हो उसे और क्या चाहिए, उसकी प्राप्तियां ही प्राप्तियां है, छोड़ना नहीं। हमें कोई कहता बहन जी आपने घर बार छोड़ा क्या, हमने कहा कभी नहीं छोड़ा, वहां लौकिक मात पिता के घर में रहते थे, अब पारलौकिक मात पिता के घर में रहते, वहां रह करके कोई जॉब करते थे, यहां ईश्वरीय सेवा का उस पारलौकिक पिता ने हमें बहुत बड़ा भाग्य दिया है। बड़ी हंसी आती कभी कभी, कई लोग, हम सब भाई बहन सरेंडर है ना, हमको ये भी प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आपको फिर सैलरी मिलती है, हम कहते सैलरी तो आपको गिन के मिलेगी, यहां तो हमें हर चीज बिना मांगे सब कुछ हाजिर है, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते उस सैलरी की। इसीलिए सैलरी के बजाय हमें दिव्य गुण, परमात्म दुआएं, उसकी ज्वेलरी, वो प्यार की रोटी, वो सम्मान का वस्त्र यहां इतना प्राप्त है, इस तुल चीजों की जरूरत नहीं। एक चिड़िया भी घोंसला बना के परिवार को चला रही, और हम भी वही कर रहे हैं। कुछ नया कीजिए, ईश्वरीय जीवन है, भगवान ने दी है, कुछ थोड़ा तो टाइम उसके प्रति अर्पण कीजिए। टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, ये तो हम सबको समय ने सिखाया कलयुग के, इसीलिए भगवान आए हैं हम सब की चोटी पकड़कर हमें इस विषय सागर से पार लगाने। तो ये राजयोग है। तो चलिए अब हम राजयोग करते हैं। कल भी आपका सत्र रहेगा, लेकिन आगे की जो शिक्षाएं प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन सच्चे सतगुरु परमात्मा को कहिए कि मैं पहले आश्रम जाऊंगा, फिर मैं और काम करूंगा। अकेले नहीं करना, उनको साथ में लेके करेंगे ना तो आपके काम ऐसे हो जाएंगे। इसीलिए आज ये प्रतिज्ञा कीजिए। हमें पता है आप बहुत व्यस्त हैं, पर आप अगर अपनी जीवन में स्वस्थ और मस्त रहना चाहते, होली हैप्पी जीवन का अनुभव करना चाहते, तो ये एक घंटा सिर्फ और सिर्फ आश्रम पर अपने लिए जाइए। सारे दुख दर्द कष्ट जीवन के हारने वाला वो हर हर महादेव है, बस उसके अर्पण हो जाइए। वो शिव है, नॉट शंकर। शंकर जी तो खुद ही शिव जी को याद करके वैराग में बैठे हैं, तो वो अंतर है शिव और शंकर में। इसलिए कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, पर शिव परमात्माय नमः कहते। तो ये सारा ज्ञान और अध्यात्म की गहराई को जीवन में अनुभव करने के लिए आपको अपने शहर के नजदीक के सेंटर पर जरूर जाना, या आप सतगुरु शिव परमात्मा को दक्षिणा दीजिए, अपने लिए, उनके लिए नहीं, मुझे अपने लिए करना है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप प्रभु प्रिय आत्माएं, ईश्वरीय संतान, महापुण्यवान आत्माएं सब यहां आकर भगवान से अवश्य अनुभव कर रहे होंगे कि बुद्धि रूपी झोली जो है उसमें कितने तो रत्न आपने पाए होंगे, वो आप खुद के जीवन में लाइए और राजयोग से अपना श्रृंगार कीजिए। ओम शांति। अब हम मेडिटेशन करेंगे, सतगुरु शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। अपने मन को संकल्प देकर बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करते हुए अनुभव कीजिए। हम सब परमात्म छत्र छाया में विराजित है, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा दिव्य सितारे की तरह हूं। मैं छोटा सा चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा अपने कर्म इंद्रियों का राजा हूं। पंच कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि और संस्कार से मैं सशक्त बनती जा रही हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। अब मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान के द्वारा इस शरीर से डिटैच अति सूक्ष्म दिव्य सितारा अब ले चलिए मन बुद्धि को इस आकाश तत्व के भी पार। सूक्ष्म लोक से भी पार विजुलाइज कीजिए, लाल ही लाल प्रकाश में ब्रह्म महतत्व, जिस महतत्व में अति सूक्ष्म दिव्य स्वरूप छोटा सा बिंदु चमक रहा है, वो ज्योति स्वरूप मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा ही है। पांच हजार वर्ष के बाद मैं आत्मा बिंदु प्यारे शिव बाबा से मिलन मना रही हूं। मैं बुद्धि नेत्र के द्वारा शिव बाबा को निहार रही हूं, वो निराकार ज्योति स्वरूप हम सबके दुख हरता सुख करता मेरे मीठे बाबा है। सच में मेरे प्यारे बाबा आप दुख हरता सुख करता है, आप कल्याणकारी है, मेरे ज्योति बिंदु बाबा आप ही पतित पावन हैं, बाबा आप अकाल मूर्त है, ओ प्यारे बाबा आप इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज स्वरूप है। मैं आत्मा आपके बिल्कुल सानिध्य में हूं। मैं आपसे मिलन मना रही, प्यारे बाबा आप मेरी जीवन को बुराइयों से मुक्त कर सद्गुणों से भरपूर कर रहे, आपका आशीर्वाद का हाथ फैल कीजिए। प्रभु पिता परम सतगुरु का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। प्रभु पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे, सदा सुखी भव, सदा ईश्वरीय खजानों से सुखी संपन्न समृद्ध रहो बच्चे। हे महान आत्माओं, मैं सदा आपके साथ हूं। आप ही मेरे बच्चे हो, मेरे मीठे प्यारे बाबा आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य महसूस कर रही हूं। प्यारे सतगुरु की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और हम सब उनके नजर से निहाल हो रहे। बाबा मैं आपसे मिलकर पुनः इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए इस कार्य क्षेत्र पर कर्मयोगी बन पाठ बजाने आई हूं। अपने भृकुटी सिंहासन पर स्वयं को देखे मैं परमात्मा आशीर्वाद से संपन्न भगवान की नजरों से निहाल। मैं श्रेष्ठ आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बन पाठ बजा रहे, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।